ईश्वर प्रायणता धारण करने के लिए सबसे पहली कंडीशन या सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि हमारे अंदर पहले ये निश्चय तो दृढ़ हो कि इस देह का कारणकर्ता और इस जगत का कारणकर्ता ईश्वर है। जिस देह रूपी जीवन को मैं व्यतीत कर रहा हूं उस ईश्वर के बिना यह संभव ही नहीं है, और यह मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। पैसा मैं कमा लूं, बड़े सांसारिक गुण भी धारण कर लूं, संसार में बड़ा होशियार भी मैं कहलाऊं, लेकिन इस देह को अपनी कोशिश से मैं जीवित नहीं रह सकता, ये पक्का मुझे मालूम है। हर व्यक्ति जानता है कि भाग में जब तक जीवन है तब तक देह जिंदा रहेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट और कोई बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी इस बार मामले में वो गफलत में नहीं है। पक्का निश्चय है कि देह का जो जीवन है ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता। तो जब मुझको इस बात का पता है कि देह का जीवन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इसको कौन चलाता है इसके बारे में ठीक ठीक निश्चय भी नहीं, क्योंकि दुनिया को देखते हैं आप, ईश्वर को मानती भी है और नहीं भी मानती है। मानती है तो डाउट में रहती है, तो निश्चय तो नहीं हुआ ईश्वर के बारे में। कोई कह देता है ये तो एक इत्तफाक है, कोई कह देता है तो प्रकृति है, जब तक देह प्रकृति चलाएगी चलेगी। कोई इस बारे में निश्चित मत नहीं है या निश्चय नहीं है कि इस देह के अंदर जो जीवन शक्ति है उसको ईश्वर कहते हैं। तो महाराज जी ने इस चीज को बड़ा क्लियर कहा, गीता में भी स्पष्ट लिखा हुआ है ये। इस जिस्म के अंदर जो जान है उसको ईश्वर कहते हैं, ये बात कोई कोई जानता है, क्योंकि ना पूर्ण गुरु का सानिध्य किसी को मिला है, ना शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत ही समझते हैं, तो सुनी सुनाई बातों से इस चीज का निश्चय नहीं होता। महाराज पे हमारी श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा है, हम उसको अपने आप को उनका शिष्य कहते हैं, तब हम ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि गुरु कह क्या रहा है। ये तो गुरु धारण करने का मतलब ही कुछ नहीं हुआ है, जब गुरु की बात पर आपका निश्चय ही नहीं है तो काहे का गुरु, वो कोई गुरु नहीं है। हम कितने भले ही कहते रहे, महात्मा मंगत राम जी का नाम लेते रहे हम हजार बार भी, लेकिन हमारा कोई गुरु नहीं। गुरु का मतलब ही एक होता है कि गुरु जो बात कह रहा है उस पर शिष्य की बुद्धि का निश्चय आ जाए, तभी उसने गुरु धारण किया है, नहीं तो बातें हैं केवल। वो तो जैसे दुनिया में होता है, घर में बेटा नहीं हुआ, उन्होंने कहा हनुमान जी की व्रत करो, हनुमान जी की उपासना करो, बेटा हो जाएगा, ऐसी महाराज जी को मानो, समझ नहीं, बस महाराज जी के 5 नियम पालन करो, जैसे मन चाहा वैसे पालन करते रहो, बेटा हो जाएगा, यही धारणाएं बना लेते हैं हम लोग। उसका गुरु से क्या संबंध, क्या होना है क्या नहीं होना है तेरे जीवन में तेरे संसार में, ये तो तेरा प्रारब्ध डिसाइड करेगा, इसमें गुरु थोड़ा डिसाइड करेगा, ये तो तेरा प्रारब्ध डिसाइड करेगा। और वो प्रारब्ध का पैकेज जो है ईश्वर ने ही इस देह को देकर भेजा है। जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में जो आप सॉफ्टवेयर फीड कर दोगे वही स्क्रीन पर आएगा, तो इस देह से वही जीवन व्यतीत होगा जो प्रारब्ध रूपी सॉफ्टवेयर ईश्वर ने इसमें फिट कर दिया, बस कोई इसमें लेश मात भी आगे पीछे नहीं कर सका। किसी को अथॉरिटी दी ही नहीं गई है, यहां तक कि सत्पुरुष की जो देह है, सत्पुरुष भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सत्पुरुष इस देह के अंदर रहते रहते मुक्त तो हो जाते हैं, ईश्वर रूप तो हो जाते हैं लेकिन देह का प्रारब्ध उनके हाथ में भी नहीं होता। देह तो अपने प्रारब्ध के अनुसार जब तक जीना है जिएगी, जो कर्म करने हैं करेगी, और जब इसने खत्म होना है खत्म हो जाएगी। आगे का जन्म नहीं होगा क्योंकि वासना खत्म है वहां पर। वासना ही तो अगला जन्म निर्धारित करती है आपकी। सत्पुरुष के अंदर क्योंकि वासना बची ही नहीं है, उसका एक लेश मात्र भी नहीं बचा है, इसलिए अगला जन्म नहीं होगा। लेकिन वर्तमान जन्म जो वासना के वशीभूत होकर हो चुका, इसका तो खाता पूरा होना ही होना है। तो इसीलिए जब सत्पुरुष की देह भी प्रारब्ध के बंधन में है तो मैं क्या चीज हूं उसके आगे? जो किसी ज्योतिष के पास जाके मैं उससे कहता हूं मेरा प्रारब्ध बदल दे, तो कोई बता दे आपके जीवन में ऐसा घटना में घटने वाला है, तो आप अप्रोच करते हो ज्योतिष के पास कि कोई पूजा पाठ करा ले, ये प्रारब्ध बदल दे, तो बस दुनिया इसी चक्कर में फंसी रहती है। लेकिन जो ईश्वर विज्ञान को समझते हैं, जानते हैं गहराई से, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, गुरु की बातों को ध्यान से पढ़ा है, तो महाजी तो साफ साफ संत अवलास में लिख रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति नहीं बदल सकती। जन्म मौत सुख और दुख सब करनी का फल है, कोई शक्ति इसको नहीं बदल सकती। इसका मतलब कि यहां बिना ईश्वर के हुक्म के एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये सत्य बात है। ऐसा नहीं है अतिशयोक्ति करके बढ़ा चढ़ा के वाणी कह रही है, इस बात के लिए कि जो होना सो हो रहा प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाई। क्योंकि सारी सृष्टि में वो चेतन सत्ता, वो ईश्वर सत्ता व्याप्त है, उसके कारण ही संसार की मर्यादा कायम है। संसार में जो जीवन, जो प्राकृतिक जीवन भी नजर आ रहा है, वो ईश्वर की प्रेजेंस के कारण है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य की प्रेजेंस के कारण धरती की वनस्पति उग रही है, यदि सूर्य की प्रेजेंस ना हो तो यहां पर जीवन नाम की कोई चीज धरती पर होगी ही नहीं, वनस्पति कहां से होगी। तो सारी कारणकर्ता धरती के जीवन की जो है वो सूर्य की रोशनी है, सूर्य की प्रेजेंस है। लेकिन ये बात विचार दृष्टि से पता लगती है, वैसे तो दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार ईश्वर भी इस सारी सृष्टि में व्याप्त है, ये बात आपको विचार से पता लगेगी, दिखाई तो नहीं पड़ेगा आपको। वो विचार गुरुवाणी क्या है, विचार ही तो है वो। शास्त्र वचन क्या है, विचार ही तो है वो। उस विचार के प्रकाश में ये सारी बात दिखाई पड़ेगी आपको, जो गुरु जो ऋषि धरती पर आकर ये बात कह रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो जब तक आपके अंदर यह निश्चय नहीं आता कि मेरी देह का, मेरे जीवन का कारणकर्ता परमेश्वर है, जिस प्रकृति में मेरी देह रह रही है उस प्रकृति का भी कारणकर्ता परमेश्वर है, उसके बिना इसका अस्तित्व ही नहीं है, तभी तो आप ईश्वर प्राण होने की कोशिश करोगे, ये तो क्यों करने लगे आप? मन के प्राण रहोगे, बुद्धि के प्राण रहोगे, जो निश्चय है, जो आपकी वासना है, जो डिजायर्स हैं, उससे गाइडेड हो गए आप और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करोगे। जब उसमें परेशान हो जाओगे आप, तब गुरु की तरफ देखोगे, अरे सारी कोशिश तो मैंने कर ली, सारी चतुराई जितनी थी बुद्धि की मैंने सब लगा ली, लेकिन मेरे जीवन के दुख तो दूर नहीं हुए, मन की बेचैनी तो दूर नहीं हुई, करूं तो क्या करूं? तब आप गुरु की तरफ सही रूप में देखते हो कि गुरु आपको नजर आता है कि ये मेरा मार्गदर्शन कर सकता है, तब उसके मार्गदर्शन की आपको जरूरत महसूस होती है। तो ऐसी स्थिति में जब आप गुरु की तरफ देखते हो, तब आप फिजिकली गुरु उपलब्ध नहीं है तो कहां जाओगे फिर आप? तब उसके मार्गदर्शन को टटोलोगे, वो क्या लिख के छोड़ गया, उसका जीवन क्या सिखाता है, वो क्या बातें अपने शिष्यों को बता गया, हर चीज को आप टटोलोगे। सारे शास्त्र क्या है, उन्हीं गुरुओं की देनी तो है और क्या है। जैसे महाराज जी के प्रेजेंट काल में समता विलास और समता प्रकाश नजर आ रहा है, ऐसी प्राचीन काल में भी सारे शास्त्र हुए। एक ऋषि का जीवन, दुनिया के सारे ऋषियों का जीवन एक जैसा होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता, उनका ज्ञान भी एक जैसा होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता, हमारी समझ में भेद होता है। चेतन सत्ता जब एक प्रकार की है, उसके ज्ञान में भेद कैसे हो सकता है, जरा विचार करके देखो। उसकी प्रकृति आदिकाल से एक प्रकार की है, तो प्रकृति के नियम में, प्रकृति के कानून में क्या भेद हो सकता है, जरा विचार करके देखो। ये सुना कि आज कलयुग आ गया तो प्रकृति के नियम बदल जाएंगे। तो इसीलिए जो कुदरत का कानून है, जो ईश्वर का विधान है, वो अटल है। जब से धरती है, जब से मनुष्य है, वो वैसा ही चला रहा है, और जब तक धरती रहेगी, मनुष्य रहेगा, वैसा ही रहेगा वो। इसलिए अध्यात्म विद्या में, अध्यात्म ज्ञान में कभी अंतर हो ही नहीं सकता। हमारी बुद्धियों में अंतर होता है, हमारी समझ में अंतर होता है। तो जब मुझको ये समझ में आता है कि सारा ब्रह्मांड उस ईश्वर के अधीन है, यदि मुझको चैन चाहिए तो उस ईश्वर के अधीन मुझको होना पड़ेगा, तब वक्त आता है आपका ईश्वर परायण बनने का। यदि ये बेसिक तैयारी नहीं है तो ईश्वर परायणता की बात ही करना बेकार है। क्या करोगे ईश्वर परायणता की बात करके? वासना के परायण ही रहोगे आप, वासना से प्रेरित होकर संसारी जीवन व्यतीत करोगे। गुरु का भी उसी के लिए इस्तेमाल करोगे, ईश्वर का भी उसी के लिए इस्तेमाल करोगे। वास्तव में आप ईश्वर परायणता धारण नहीं कर सकते। ये निश्चय पहले चाहिए। यहां आके पता लगता है कि सत्संग की क्या जरूरत है, संगत की, नकली संगत नहीं, असली संगत, जिस संगत में इस प्रकार का निश्चय हो, भले वो चार लोग हों या दो लोग। तो जिनके अंदर ये निश्चय है, उनके साथ बैठकर, उनके साथ वार्तालाप करके, यदि नहीं मिलता कोई तो शास्त्रों का स्वाध्याय करके, जब आपकी बुद्धि उसी निर्णय पर पहुंचती है जिस निर्णय को वो शास्त्र, वो ऋषि बयान कर रहे हैं, तब मेरी पात्रता तैयार होती है ईश्वर परायणता की ओर अग्रसर होने की। फिर मैं लोगों की तरफ नहीं ताकता, हर बात के लिए मैं ईश्वर की तरफ देखता हूं, उसका मार्गदर्शन ग्रहण करने की कोशिश करता। तो मुझको डर नहीं रहता, फिर किसी प्रकार का भी डर नहीं होता, चाहे छोटे से छोटा काम करूं, चाहे बड़े से बड़ा काम करूं। जिसके अंदर ईश्वर विश्वास है, ईश्वर निश्चय है, उसका काय का डर भाई, करने वाला वो है। और मैं अपनी करने के प्रति ईमानदार तो हूं, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं किसी से कुछ छिपा नहीं रहा हूं, जो कर रहा हूं मैं, जब डर ही नहीं है तो मैं करूंगा, जो करना है मैं, जो उचित समझूंगा वही तो करूंगा ना मैं, जैसी मेरी बुद्धि है। तो भय काय का फिर? तो पूरी तरह से उसका अंदर से ईश्वर पर आधारित जीवन होता है, इसलिए उसके अंदर निडरता भी होती है, फिर कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। यदि मान लिया किसी मनुष्य ने मेरा बिगाड़ा भी, तो देखने में तो वो मनुष्य मेरा बिगाड़ रहा है, लेकिन अंदर से मेरा निश्चय है कि ईश्वर ही इसके द्वारा मुझको दुख दे रहा है। इसलिए कारणकर्ता उसकी वहां से निगाह नहीं हटती कि ईश्वर के अलावा भी कोई कारणकर्ता है इस धरती के ऊपर, वहां से निगाह उसकी नहीं हटती, पक्का निश्चय होता है उसका। बाहर का घटनाक्रम चाहे कैसा भी घटता रहे, उसके अंदर यह विश्वास उसका नहीं हिलता कि इसका कारणकर्ता परमेश्वर है। सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। इसलिए ईश्वर प्रायणता धारण करते करते जीव अपने आप को अकर्ता ही समझने लगता है कि प्रभु कारणकर्ता तो तू है। तो जिस शिष्य के मन के अंदर, जिस व्यक्ति के मन के अंदर यह बात आ गई कि इस जगत का कारणकर्ता परमेश्वर है, मेरा जो कर्तव्य शास्त्र बता रहे हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूं, मैं ईमानदारी से उसके अनुसार चलने की कोशिश कर रहा हूं, अपना कर्तव्य पूर्ति करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फल से निगाह हटाकर, कर्म तो मैं फल के लिए ही करता हूं, प्लानिंग में फल को सामने रखकर ही करता हूं, लेकिन कर्म जब कर चुकता हूं तो फल से निगाह हटा लेता हूं। क्योंकि जिसने ईश्वर परायण होना है, अर्थात ईश्वर के लिए जीना है, वो फल के लिए नहीं जिएगा। उसका संबंध केवल कर्म तक होता है। गीता की बात वो याद रखता है, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार हो गए। अधिकार क्यों है? क्योंकि वो प्रारब्ध है तेरा, वो तेरी देह का प्रारब्ध है, इसलिए वो कर्म हो रहा है देह से। तू मजबूर है करने के लिए, तो तूने जो तेरे सामने कर्म आते हैं कर्तव्य भावना से होश में रहते हुए अर्थात शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार तू करने की कोशिश कर, और उसका जो रिजल्ट निकलता है फल निकलता है उससे तू निर्लेप रहने की कोशिश कर। जरूरी नहीं है तू निर्लेप रह पाएगा, ये तो तेरी अंदर की स्थिति पर निर्भर करेगा। जितना तू ईश्वर से लगा रहेगा उतना ही निर्लेप होता रहेगा। तो जो ईश्वर प्रायण जीवन व्यतीत करना चाहता है वो पहले ही तैयारी करता है कि मैंने कर्म के फल से निर्लेप होना सीखना है, क्योंकि मनुष्य को परेशान क्या चीज कर रही है, सुख और दुख, बनना और बिगड़ना, यही तो परेशान कर रही है आपको चीज। यहां तो हर चीज परिवर्तनशील है, किस किस चीज को संभालोगे आप, किस किस चीज की रक्षा करोगे, दो पल में कुछ का कुछ हो जाता है। एक मिनट के लिए भूकंप आया पूरा काठमांडू तबाह हो गया, किसने रोक लिया, कितनी सेंचुरीज का डेवलपमेंट होगा वो एक मिनट में तबाह हो गया। तो आपका जो सुख है वो तो बहुत ही क्षणिक है, लेकिन हम देखते ही नहीं खुली आंख से। प्रकृति में सारे घटनाक्रम घटते रहते हैं लेकिन सीखते नहीं, हम गहरे मोह में जीते हैं, गहरे अहंकार में जीते हैं कि मेरे करने से सब कुछ कर लूंगा मैं, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन प्रकृति बार बार आपको चेतावनी देती है कि ये जीवन क्षणिक है, तेरे सुख क्षणिक है, तो इतना लंबा वक्त जीवन का बहुमूल्य इस सुखों की प्राप्ति के लिए क्यों व्यतीत कर रहा है जो क्षणिक है। तूने 40 साल लगा दिए एक परिवार को बसाने में, अच्छी तरह से अच्छा मकान बनाया, अच्छे एसेट्स इकट्ठे किए, अच्छी एजुकेशन दी, है नहीं, एक घटनाक्रम ऐसा घटा कि सब तबाह हो गया तेरा, तेरी कीमती जिंदगी 40 साल की बर्बाद हो गई तेरी, जिसके लिए क्या वही मर गया। तो ऐसी मूर्खता हम बार बार करते रहते हैं इसी अज्ञानता में कि मैं मालिक हूं, तुम्हारी देह का, तुम्हारे जगत का मालिक ईश्वर है, इसको समझो। कहने से कोई एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन समझने से एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए शास्त्र का जो गहरा मनन करना चाहिए, कहने को समतावलास एक पुस्तक है लोगों के लिए लेकिन वो जीवन है, वो समतावलास पुस्तक नहीं है, वो जीवन है। जिसने उसको समझने में, उसका मनन करने में जान लगाई, जिसने उसको अपना जीवन समझा, वो जीवन देगी उसको। एक ही शास्त्र आपको ईश्वर से मिला देगा, इसलिए समतावलास गुरु है भाई, वो किताब नहीं है, वो गुरु है। तो उसके अनुसार जब बुद्धि का आपका निश्चय बनेगा तब आप ईश्वर प्रायणता धारण करने की सही रूप में कोशिश करोगे। केवल शब्द नहीं रटोगे कि ईश्वर प्रायणता, ईश्वर प्रायणता का मतलब ये होता है कि उसकी इच्छा पर जीना, ईश्वर की इच्छा पर जीना, विल ऑफ गॉड, इसके अनुसार मनुष्य ने जीना होता है। तो इसीलिए आपको ईश्वर की विल का तो पता नहीं, नियम का जरूर पता है उसका, विधि का विधान का जरूर पता है, वो तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। जब वाणी ये बात कह रही है कि यहां पर जो है वो प्रभु की आज्ञा में सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब वाणी तो स्पष्ट कर रही है कि विधि का विधान क्या है, कि तूने ईश्वर के हुक्म में जीना है, जब उसके आज्ञा से चल रहा है तो तूने उसके हुक्म में जीना चाहिए। तो उसको तो अधिकार ही नहीं दिया गया उसमें इंटरफेयर करने का, यदि तू इंटरफेयर करता है तो बर्बादी अपनी करेगा, तू परेशान तेरा ही मन होगा, चिंता फिक्र तुझी को होगी, प्रकृति का बिगाड़ सकते हो हम क्या, ईश्वर के विधान में, ईश्वर की रचना में कोई दखल दे सकते क्या। मनुष्य कर ले प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पैदा, खूब भोग ले, मरेगा खुद ही, जो प्रकृति उसकी रक्षा कर रही है वही प्रकृति उसको मार देगी। तो तूने जो साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ाई, बड़ा अहंकार बढ़ाया कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला उसका, मरा तो ही, प्रकृति का क्या हुआ, प्रकृति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम, बिगड़ेगा मेरा ही। इसलिए यदि मैंने बचना है, यदि सफल जीवन व्यतीत करना है, तो अंत में मुझे ईश्वर की ही माननी पड़ेगी, उसी की बात जाननी पड़ेगी, उसका कानून क्या है मुझे समझना ही पड़ेगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ईश्वर के आगे नहीं चलता, उसका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी प्रकृति उसके अधीन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के, मनुष्य की वहां एंट्री नहीं है। तो इसीलिए हमारा लाभ इसी में है, हमारा फायदा इसी में है, हमारे जीवन की सफलता इसी में है कि गुरु जो बात कह रहा है उस पर मर मिटे, अपने अहंकार को मिटा दें, अपने कर्तापन को मिटा दें, समझे नहीं, अपनी जो डिजायर्स हमने पाल रखी है भोगों की, इसको न्यूछावर कर दें। तो यदि हमारी इतनी तैयारी है अंदर की, ये समझ हमारे अंदर आई है, तब ईश्वर परायणता कोई कठिन चीज नहीं है। फिर अब किसी ने दौड़ कभी लगाई ना हो एक किलोमीटर की भी, और 3 किलोमीटर की रेस लगाने का नंबर आ जाए, वो तो गिर पड़ेगा बेचारा, कहां लगाएगा। लेकिन 3 किलोमीटर की रेस वो लगा सकता है, भले ही उसने 1 किलोमीटर की रेस जिंदगी में ना लगाई हो, वो पहले 100 मीटर की रेस लगाएगा, फिर 120 मीटर की रेस लगाएगा, धीरे धीरे उसकी मसल्स तैयार हो जाएंगी, 3 किलोमीटर की भी लगा लेगा। तो महाराजी तो ये कर रहे हैं, प्रेमी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, महाराजी ईश्वर प्रायणता कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं प्रेमी सबसे पहले तो उन कर्मों का त्याग कर जिसको तू जानता है कि यह गलत है, जिसको तू जानता है ये गलत है, सबसे पहले तू उन कर्मों का त्याग कर। खान पान के मामले में जानता हूं मैं, मीठ खाना गलत बात है, जानते समय स्वादवश या सोसाइटी के वशीभूत होकर आदमी मीठ खाए, कोई विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने बारे में सोच सकता है इंसान कि मीठ खाना ये हिंसक स्वभाव पैदा करना है, इसका असर आपके स्वभाव पर पड़ेगा, और ईश्वर प्राप्ति के लिए कैसा स्वभाव चाहिए, सत्वगुणी स्वभाव चाहिए। तो जब मैंने सत्वगुणी स्वभाव तैयार करना है तो मैं अंडा और मीट मछली कैसे खा सकता हूं, शराब कैसे पी सकता हूं, नशीले पदार्थों का सेवन कैसे कर सकता हूं। तो हर मामले में आपको इस वास्ते जागरूक रहना पड़ेगा कि मैंने सत्वगुणी स्वभाव बनाना है, क्योंकि सत का संबंध ईश्वर के साथ है, मैंने अपना ईश्वर का के साथ संबंध स्थापित करना है, उसकी ओर अग्रसर होना है, तो मेरा आहार शुद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आहार शुद्धता का संबंध आपकी कमाई से भी, तो व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए फिर आपका। तो शुद्ध कमाई से सतोगुणी आहार खरीद कर उसका सेवन की परमिशन मुझको है, वो भी समय पर और मर्यादा में, भूख से ज्यादा नहीं खाना क्योंकि वो भी आपको नींद बढ़ाएगा, तमोगुण पैदा करेगा। तो हर चीज का प्रभाव आपके इस गुण पर पड़ना है, सोने का प्रभाव भी पड़ना है, काम करने का प्रभाव भी पड़ना है, लोगों से बातचीत का प्रभाव भी पड़ना है, आपकी जितनी भी दैनिक क्रिया है हर चीज का प्रभाव आपके इस सत्वगुण पर पड़ना है। इसीलिए गीता कहती है युक्त आहार विहार से, युक्ति का आहार और विहार आपका होना चाहिए। तो इसीलिए यदि मैंने ईश्वर परायण होना है तो मेरा जो दैनिक जीवन है वो मर्यादा में होना ही चाहिए, ठीक उसी प्रकार की मर्यादा जैसा कि समता विलास या अन्य शास्त्र उसके बारे में मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो कोई चीज मेरी छूटेगी नहीं इसमें, पूरा आपका जो A to Z लाइफ है वो आपके इस सत्वगुण से जुड़ी हुई है। यदि सत्वगुण आपने अर्न करना है तो लाइफ का हर एस्पेक्ट आपको सुधारना ही होगा। किसी देश की, किसी व्यक्ति की, किसी समाज की आप नकल नहीं कर सकते, आपको गुरु से अकल लेनी ही पड़ेगी यदि आपने अपना जीवन सफल बनाना है तो। सांसारिक बुद्धि से सफलता नहीं मिलने वाली आपको। तो इसीलिए महाजी ने उसको 5 नियम में समराइज कर दिया सारे मार्ग को। सादगी की बात कर दी इन्होंने कि भाई डिजायर बेस्ड लाइफ नहीं, नीड बेस्ड लाइफ होनी चाहिए। हमारे जीने का तरीका है इच्छा पूर्ति का, इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। और सत्पुरुष कहते हैं तेरी नीड पूरी होनी चाहिए, जो देह की आवश्यकता है, कोई मने नहीं करता इसकी पूर्ति के लिए। महाजी ने वस्त्र के बारे में कह दिया, देश चाल की जो मर्यादा हो उसके साथ साथ वस्त्र पहनो, कोई मना थोड़ा ना करता। पैंट चलती तो पैंट पहनो, धोती चलती है धोती पहनो, पजामा चलता है पजामा पहनो। लेकिन यदि फैशन करने लगे, देह को दिखाने लगे लोगों को, तब ईश्वर की कहां याद आएगी? फिर तो देह की याद आएगी आपको, फिर तो हमारे अंदर ईश्वर का भाव पैदा ही नहीं हो सकता। फिर तो कैसे पैदा होगा? जो देह का पुजारी है, देह का अहंकार बढ़ाने पर लगा हुआ है, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना मॉडर्न हूं, तो जिसके अंदर देह का अहंकार इतना गहरा है उसके अंदर ईश्वर का भाव कहां से आ जाएगा भाई? सोच विचार करके तो देखो। इसलिए गहरे भोगवाद में डूबे हुए लोगों के लिए ईश्वर का मार्ग नहीं है, है ही नहीं उनके लिए। जो घोर रजोगुणी घोर तमोगुणी लोग हैं उनके लिए ईश्वर नहीं है। आपने देखा भी होगा ऐसे लोग ईश्वर की बात सुन लेंगे, मंदिर भी चले जाएंगे, ऐसा नहीं मत समझिए, मस्जिद भी चले जाएंगे, वो गिरजाघर भी चले जाएंगे, लेकिन उनके अंदर ईश्वर नाम की कोई चीज होती नहीं है। वो भी एक फैशन है, एक परंपरा निभा लेते हैं, या यूं कह लिए कि एक लोक चलन जो होता है ना, वो अपने कर लेते हैं, ईश्वर से कोई संबंध नहीं उसका। इसलिए हर बात में बाई गॉड भी कह देंगे वो। बाई गॉड का मतलब ही कुछ नहीं, कोई भाव ही नहीं उसके पीछे, ये मुंह से निकले हुए दो शब्द हैं खाली। तो इसीलिए जो सादगी है, सादगी कोई साधारण चीज नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है भाई। खाने के मामले में, कमाने के मामले में, लोक व्यवहार के मामले में, पहनने के मामले में, बातचीत करने के मामले में, हर मामले में ये सादगी चाहिए। बोलने के मामले में सादगी का यही मतलब है, जैसे एक साधारण बच्चा होता है ना, उसके अंदर चालाकी नहीं होती, जो बात मन में होती है वो कह देता है, उसे नहीं पता ये अच्छी है बुरी है, जो बात मन में होती है वो बाहर कह देता है। ऐसी सादा सा कोई इंटीरियर गांव वाला हो, वो भी उसके अंदर चालाकी नहीं होती, शहर वालों से उसकी भेंट नहीं होती ना, इसलिए चालाकी भी नहीं आती उसके अंदर, वो भी जो बात हो ये कह देगा सादे शब्दों में। शहर वाले कहते हैं ये गांव वाला है, इसलिए सीधी सच्ची बात कर रहा है। तो ये सादगी है, बोलने में सादगी है कि जो अंदर है वो मेरे बाहर प्रकट हो रहा है। ये सादगी कब अपनाएगा ये मनुष्य? तभी अपना सकता है जिसकी अपनी आवश्यकताएं कम हो। जिसकी आवश्यकताएं कम होंगी वो बेईमानी करके पैसा क्यों कमाएगा वो, और ज्यादा पैसा भी क्या करेगा वो, तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है उसको, फिर मकारी करने की क्या जरूरत है, जो बात हो ये बता दे। ऐसा बोलचाल में भी सादगी, पहनावे में भी सादगी, इसलिए कि बहुत ज्यादा पैसा तो ये कपड़े पे ना खर्च करना पड़े, नहीं तो ज्यादा कमाना भी पड़ेगा, फिर ये ज्यादा छाटने भी पड़ेंगे मार्केट में से कौन सा फैशन चल रहा है, ज्यादा सिलवाने भी पड़ेंगे, फिर ज्यादा मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। जो जिंदगी ईश्वर का सिमरन करने के लिए मिली है, सिमरन तो कपड़ों का होगा फिर, और फिर इस देह का होगा कि मैं और लोगों से कितना सुंदर लग रहा हूं, कितना श्रेष्ठ लग रहा हूं। तेरी श्रेष्ठता देह को दिखाने में समझी जाएगी, बुद्धि की श्रेष्ठता नहीं होगी तेरे अंदर। तो इसीलिए ये सादगी कहने को एक वर्ड है वो, लेकिन पूरा आपका जो ये सांसारिक जीवन बाहर का है, ये सादगी से प्रेरित होना चाहिए। इसीलिए वो सूत के ऊपर महाराज जी ने पूरा चैप्टर लिखा संतरविदास के अंदर, और उसके पीछे की बैकग्राउंड भी लिखी, ये पांच नियम मैं क्यों लिखने जा रहा हूं उसकी बैकग्राउंड ही पहले एक दो पेज में लिखी महाराज जी संतरविदास। ध्यान से पढ़ के तो देखें उसमें, वाणी में भी कितने सूत्र आए सादगी के बारे में, वहां देखो तो सही। इसको केवल एक सादगी की बात थोड़ा है कि मैंने सफेद कपड़े पहन लिए मैं सादा हो गया। सफेद कपड़े पहनने से क्या होता है? हो सकता है इसी का अहंकार हो कि मैं बड़ा साफ सुथरा रहता हूं, तभी देह याद आ रही तुझको। तो सादगी मन का एक विचार है, इसलिए महाराज कहते हैं कि मन में सादगी जब आन समाई तभी सादा जीवन पाई। मन में सादगी पहले होगी, सादा जीवन तेरा बाद में होगा। मन में सादगी नहीं है, बाहर सादा जीवन है, तो वो तो पाखंड बन जाएगा तेरे लिए। जैसे नेता लोग करते हैं, पाखंड नहीं करते सादा बन के, सेवादार बन के पाखंड नहीं करते। जाओ तो ऐसा व्यक्ति ही फिर वो सत्य का पालन भी कर सकता है। तो सत्य का पालन का मतलब होता है कि एक ईश्वर पर भरोसा, एक ईश्वर सत्य है, बाकी सारा संसार परिवर्तनशील है, नाशवान है। इसलिए तूने एक सत्य पर आधारित जीवन व्यतीत करना है, और उस सत्य के जो कानून है, सत्य एक ईश्वर है, इसलिए उस ईश्वर का जो कानून है उस पर तेरा गहरा विश्वास होना चाहिए कि इस संसार में ना मुझे कोई लेशमात्र दुख दे सकता है, ना मुझे कोई लेशमात्र सुख दे सकता है। इसलिए मैं उनकी तरफ देखूंगा क्यों, क्यों देखता हूं मैं उनकी तरफ? पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो पास्ट में मैं कर्म करके आया हूं, चाहे इस जन्म के हो चाहे पिछले जन्म के हो, मुश्किल मेरे जीवन में जो सुख के दिन आएंगे, दुख के दिन आएंगे, जो घटनाक्रम घटेगा वो उसके अनुसार घटेगा। किसी को ताकत ईश्वर ने दी ही नहीं है कि आपको इतना सा भी सुख दे सके या इतना सा दुख दे सके। मुझको अपने बेटे से ही सुख या दुख मिल रहा है तो वो मेरा प्रारब्ध है, उसका कारणकर्ता बेटा नहीं है। इस गलत फहमी में ना रहे, कुदरत ही उससे सेवा करवा रही है, माता पिता की। और जिसके भाग में सुख नहीं है, जो अच्छे कर्म करके नहीं आया, वही बेटा उसको दुख देने का कारण बन जाएगा। वही बेटा जो है माँ बाप को घर से निकाल के बाहर कर देगा। तो किसके हुक्म में चल रहा है वो? वो भी ईश्वर के हुक्म में चल रहा है, भले उसको इस बात का पता ना हो। तो एक सत्य पर भरोसा, उस ईश्वर पर निश्चय और उसके विधान पर पक्का निश्चय, तो यह है सत्य का पालन। फिर काहे को आप झूठ बोलोगे, काहे को बेमानियां करोगे? आप जो बात नहीं कहनी है नहीं कहोगे, जो थोड़ा है सारी बात कही दू मैं। सत्य बोलने का मतलब थोड़ा है तेरे मतलब की बात हो या नहीं हो, तू तो चालाक बनकर मुझसे कुछ पूछना चाहता है, और सत्य बोलने के अहंकार में मैं तुझे बता दू, मैं क्यों बताऊं? मैं चुप रहूंगा। तीसरा सूत्र महाजी सेवा का दे रहे हैं। सेवा क्या मतलब हुआ? मैं हर चीज का उपयोग अपने सुख के लिए करना चाहता हूं, चाहे घर के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे वस्तुएं हों, हर चीज का उपयोग मैं अपने सुख के लिए करना चाहता हूं। इसका नाम है स्वार्थ। सबसे संबंध मेरा वही होता है। कोई मित्र भी बनाऊंगा तो पहले ही सोच लूंगा ये मुसीबत में मेरे काम आएगा। माता पिता बच्चे का पालन करेंगे, पहले ही सोच लेंगे जब ये बड़ा हो जाएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो उस समय मेरे काम आएगा, मेरी देखभाल करेगा। इसका मतलब तुझे बेटे पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा नहीं है। तुझे तो ये भी पता नहीं है बुढ़ापे तक वो बेटा जीवित भी रहेगा नहीं रहेगा, कौन देखभाल करेगा तेरी? तो इसीलिए तू सेवा भाव से संसार में जीना सीख, स्वार्थ भाव से नहीं। अर्थात तू दूसरे के लिए सोच कि दूसरे के आगे जो तकलीफ है मैं उसमें क्या सहायता कर सकता हूं। सारी कुदरत सहायता कर रही है तो मुझसे भी प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं तू भी दूसरे की मुसीबत में सहायता करने वाला बनेगा, उनके काम आएगा। तेरी सोच यहां खड़ी होनी चाहिए, ना कि हर चीज को देखता है ये मेरे किस काम आएगी। ये सोच ही गलत है, क्योंकि मनुष्य जन्म इस वासना की निवृत्ति के लिए मिला है, और तू ईश्वर प्रायता इस वासना की निवृत्ति के लिए ही धारण करना चाहता है। तो जीने का प्रमाण तो बदलना चाहिए ना तेरा। तो यही है कि तूने सेवा भाव से संसार में जीना है, जिसका रिटर्न तुझको कुछ भी नहीं चाहिए, इसी को निष्काम सेवा कह देते हैं। निष्काम सेवा का मतलब यह है कि कामना खत्म करने के लिए सेवा। तो अपनी मन की वासना जो तुझे तड़पा रही है, जो तेरा पतन कर रही है, इस वासना का इलाज करने के लिए, इस वासना को खत्म करने के लिए तूने जीवन में सेवा धारण करनी है, ना कि इसलिए कि भविष्य में मुझे सुख मिलेंगे आज सेवा करूंगा। तो ये निष्काम सेवा नहीं है, तो तेरी वासना खड़ी रखेगी। चौथा सूत्र महाजी दे रहे हैं सत्संग का। सत्संग का मतलब सत्विचार। सत्विचार किसे कहते हैं? जो विचार ईश्वर ने प्रकट किया है उसको सत्विचार कहते हैं। इसीलिए जो डायरेक्ट सत्पुरुष की कलम से लिखा गया या उसके मुंह से प्रकट हुआ है वही सत्विचार है, और दुनिया की कोई किताब सत्विचार नहीं है। बड़े से बड़े अच्छे मनुष्य हों उनके विचार को सत्विचार नहीं कहते, सत्विचार रेवलेशन को कहते हैं, जो डायरेक्ट जो है वो वाणी प्रकट हुई है वो सत्विचार है। इसलिए उस पर वो सामने खुला हो, उस पर मैं गहरा मनन करूं, उसको समझने की कोशिश करूं, उसको समझने के लिए मैं दूसरी पुस्तकों की सहायता ले सकता हूं, दूसरे व्यक्तियों की सहायता ले सकता हूं, लेकिन सत्विचार उसी को कहेंगे जो, तो इसलिए उनको श्रवण करना, उनको समझने की कोशिश करना और उन्हीं को पढ़कर मनन करने की कोशिश करना, इसका नाम है सत्विचार। तो सत्विचार जब तक आप नहीं पढ़ोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर आप इस प्रोग्राम पे चलोगे कैसे। और अंतिम बात वो कहते हैं सिमरन की, क्योंकि तूने ईश्वर तक पहुंचना है, ये सारा प्रोग्राम तुम क्यों अपना रहा है कि ईश्वर तो दूर नहीं है, अंतर इस देह के अंदर मौजूद है, वो तेरे जिस्म की जान है, लेकिन तेरा संबंध मन से तो है, तेरा संबंध इंद्रियों से तो है, तेरा संबंध देह और संसार से तो है, अंतर्यामी ईश्वर होने के बाद भी तेरा संबंध ईश्वर से कोई भी नहीं। तो ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए तूने इस मन को संसार से मोड़कर तूने करतार की तरफ लगाना है, तो उसका एक ही मार्ग है सिमरन। तो इसलिए पूरा ये जो चार पॉइंट प्रोग्राम जो है ये सिमरन के लिए, और इसके बिना सिमरन हो भी नहीं सकता। तो इसलिए पांचों पॉइंट का जो प्रोग्राम है ये, पांच सूत्री जो कार्यक्रम है ये प्रभु प्रायणता ही है, हटके से कुछ प्रभु प्रायणता नहीं होती। जब तेरे दिमाग में यह है कि मैंने अंतर्यामी प्रभु से भेंट करनी है, उसको मैंने जानना है, उससे प्रेम स्थापित करना है, उसका अनुभव प्राप्त करना है, उसके लिए जब ये काम करता है तो तुझको प्रभु की ही याद आएगी कि मैं खाना भी सादा खा रहा हूं तो इस वास्ते खा रहा हूं कि प्रभु से मिलन हो जाए, तो खाना खाते हुए भी तुझे प्रभु की याद आएगी। सो भी रहा है तो मर्यादा में कि मैंने सुबह 4 बजे उठना है और प्रभु की याद करनी है, तो अलार्म लगाते वक्त भी याद आएगी मैं 4 बजे क्यों उठना चाहता हूं, प्रभु की याद के लिए उठना चाहता हूं। तेरा हर काम तुझको प्रभु की याद दिलाएगा। यदि तेरा लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है तो उसके लिए जीना चाहता है। इसलिए वाणी कह रही है कि हाथ पांव नित कर्म में, मन में साचा राम, अनन भगत कर पूजिए मिटे 84 जाम। हाथ पांव निरंतर रत रहते हुए, कार्यरत रहते हुए अंदर प्रभु की याद बनी रहनी चाहिए ताकि ये 84 का चक्र खत्म हो और जीवन प्रभु प्रायणता प्राप्त करके सफल हो। ओम ब्रह्म सत्यम।